جناب سمیر قادری کا افسانہ کھٹمل۔ انورا کی نیند ٹوٹ گئی، اس نے مس اعجاز ملک کی دھاڑ سنی۔ دانو حرامی، نمک حرام کہیں کا! تبھی جیل کا گجر گونج اٹھا۔ رات کے 2 بجے تھے، انورا 12 کے بعد لیٹی تھی۔ دن بھر کی تھکن سے اس کی نس نس ٹوٹ رہی تھی، بڑی دیر کے بعد نیند آئی تھی۔ مشکل سے 1.5 گھنٹے سو پائی ہوگی کہ مس اعجاز ملک کی دھاڑ سن کر اٹھ بیٹھے۔ اسے بڑے زور کی جھونجھل آئی، دل و دماغ میں نفرت کا کڑوا دھواں سا بھر گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل سو رہا ہو، کھارے کھارے آنسو بہا رہا ہو، ٹھیک ویسے ہی جیسے پاک کرتے وقت گیلی لکڑیوں کے کڑوے دھوئیں سے آنکھیں آنسو برسانے لگتی ہیں۔ وہ روانسی ہو گئی، سوچا کہ ٹال جائے، مگر تبھی اس کی نظروں کے سامنے مس اعجاز ملک اپنی تمام تر قہر سامانیوں کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ پچھلی صبح چائے پیتے پیتے جیسے انہیں کرنٹ چھو گیا ہو۔ کچھ جھٹکے کے ساتھ برج پیالی میز پر چھوڑ کر اٹھی تھی اور دانو کو بنگلہ، اردو اور انگریزی کی 20 گالیاں سننا پڑی تھی۔ ان کا بایاں ہاتھ کوزے پر تھا اور منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ امڈ رہی تھی۔ حرامی، ایڈیٹ، کمینے، کتنی بار کہا کہ کرسیوں اور مسیریوں کے جوڑوں میں کروسین ملا ہاٹ واٹر ڈال دیا کر، پر سنتا ہی نہیں۔ کمینہ، کھٹمل کھٹمل، ہر جگہ کھٹمل، گندا کہیں اس کا۔ نوکری سے ڈسمس کر دوں گی تب پتہ چلے گا۔ نوکری سے الگ کرنے کی دھمکی یاد آتی ہی انورا خوف سے کانپ اٹھی۔ اس نے جھجھوڑ کر پاس ہی لیٹے اپنے شوہر دین الدین عرف دانو کو جگایا اور مس اعجاز ملک کے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ انورا اور دانو کی شادی 2 برس پہلے ہوئی تھی۔ شہر وہ پہلی دفعہ 4 مہینے ہوئے آئی تھی۔ اس کی شادی کے 1.5 مہینے بعد ہی اس کے گاؤں جھالا کاٹی میں پانی کا دریا چڑھایا۔ ان کی مستاپاٹ کی فصل سیلاب میں بہ گئی، گھر باڑی سبھی کچھ تباہ ہو گیا، سونار دیش کے کسان بھوکو مرنے لگے۔ تبھی دانو دوسرے سیلاب زندگان کی طرح کھیتی باڑی کو چھوڑ کر شہر کی طرف چل دیا۔ اس وقت لوگ ان شہروں کی طرف جو سیلاب سے کچھ حد تک محفوظ تھے ایسے امڑ رہے تھے جیسے گڑ کی بھیلی پر پرواز چونٹیاں۔ انورا تب نہ روئی تھی اور نہ اس نے لمبی لمبی ٹھنڈی سانسیں ہی بھری تھی۔ ہاں، کچھ کھوئی کھوئی ضرور رہی تھی وہ 5-10 دن، پھر سب کچھ جیسے پہلا جیسا ہو گیا۔ 1 سال 5 مہینے کیسے کٹ گئے انورا کو پتہ ہی نہ چلا۔ اچانک چند دنوں بعد دانو صاف ستھرے کپڑوں میں گھر پہنچا اور اس کے ساتھ وہ شہر چلی آئی۔ دانو کو ایک مقامی گرلز کالج میں چپراسی کی نوکری مل گئی تھی۔ کالج کے پیچھے رہائشی کوارٹرز تھے، انہی میں پرنسپل مس اعجاز ملک رہا کرتی تھی۔ کوارٹر کے سامنے تھوڑا سا لان چھوڑ کر کچن اور ایک کوٹری تھی جس میں دانو اور انورا رہتے۔ دانو صبح سے مس اعجاز ملک کی خدمت میں لگ جاتا اور صبح 9 بجے سے شام کے 5 بجے تک کالج میں رہتا۔ بعد میں پھر رات 10-11 بجے تک اسے مس اعجاز ملک کی خدمت کرنا پڑتی اور ان سب کا معاوضہ اسے مہینے میں 60 روپے کی شکل میں ملتا اور مس اعجاز ملک کی گالیاں بخشش ہوئی۔ انورا کی نوکری نہ تھی مگر وہ دانو کی بیوی تھی، اس لیے اسے مس ملک کا کھانا بنانا پڑتا، کپڑے دھونا پڑتے اور جھوٹے برتن صاف کرنا پڑتے۔ اس کا بھی سارا دن ان کی خدمت کرتے ہی گزرتا اور آج تو حد ہی ہو گئی، سارا دن پانی گرم کرتے گزرا۔ دانو نے مسحری اور بھاری بھاری کرسیوں کو لان میں نکالا اور مٹی کے تیل ملے گرم پانی سے ان کی خوب دھلائی کی۔ اس کے بعد اس نے ڈھیر سے کپڑے دھوئے، مس اعجاز کے لیے چائے، کھانا، سبھی کچھ تیار کیا۔ ان سب سے فارغ ہو کر اپنے اور دانوں کے لیے بھات ابالا۔ دال ترکاری کے لیے پیسے ہی نہ تھے، نمک اور پیاز سے ہی بھات کھا کر سو رہی، اور وہ بھی سو ہی رہی تھی کہ مس اعجاز ملک کی دھاڑ نے نیند حرام کر دی۔ مس اعجاز ملک کی عمر یہی کوئی 35-37 کے درمیان رہی ہوگی۔ جسم بھرا بھرا مگر بے ڈول تھا، مونڈے اور پیڑوں ساتھ ساتھ شر لگا کر بڑھ رہے تھے۔ रंग गोरा था पर उसमें एक अजीब सा पीलापन झलकता था, जैसे मुरझाने से पहले फूल मटियारा पड़ने लगा हो। थोड़ी का गोल भी लटकने लगा था और सेहा बालों के बीच एक दो सफेद तार भी खिंचाए थे। बड़ी बड़ी कटेली आंखों में कुआरी चमक की जगह एक बेनाम सी उदासी का धुंधलापन मंडने लगा था, जिसे आंखों में नीचे के हल्के काले धब्बों ने और भी गहरा कर दिया था। कॉलेज की उस्तानियां अक्सर अनवरा से बातचीत कर उसके कोठरी में आ जाती, मगर उनकी बातें हमेशा मिस एजाज मलिक के गिरती घूमती रहती। उनके जिक्र के अलावा शाज और नाजी दूसरी गुफ्तगु करती। चंद ही दिनों में अनवरा मिस एजाज मलिक के बारे में बहुत कुछ जान गई। मिस एजाज मलिक के बाप हाईकोर्ट के मशहूर जज थे, जिनका अरसा वकार के हादसे में इंतकाल हो गया था। माँ पहले ही मर चुकी थी, एक भाई था वो बचपन में कहीं चला गया था, फिर उसकी कोई खबर न मिली। बाप के इंतकाल के बाद कई रिश्तेदारों ने मिस एजाज को अपने साथ रखना चाहा, मगर उन्हें किसी का सहारा लेना गवारा ना किया। अब इस भरी दुनिया में वो बिल्कुल अकेली थी। फिर उन्होंने शादी ना करने का अहद कर लिया था। उन्हें मर्दों से नफरत हो गई थी, वो मर्दों के साए से भी दूर भागती। अगर कॉलेज में भी किसी तालिबा का कोई सरपरस मिलने आता तो उससे बहुत खुश बर्ताव करती। कभी कभी तो उनका बर्ताव कुछ इतना खुश हो जाता है कि मिलने वाला उनको बिल्कुल गवार ही समझता। कॉलेज की इंतजामिया के पास मिस एजाज मलिक के इस रवैये की बहुत सी शिकायत भी पहुंची थी, मगर आज 7 बरसों से मिस एजाज मलिक के बर्ताव में कोई फर्क ना आया था। वो कुंवारी उस्तानियों से भी तनी तनी सी रहती, इन्हें बुरी तरह झिलक देती। ऐसे मौकों पर उनके लहजे में गजब का जहरीलापन आ जाता। दो एक उस्तानियों ने तो उनके इस तौहीन आमेज रवैये से तंग आकर नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन शादीशुदा उस्तानियों से उनका रवैया कुछ बेहतरी होता। इस वक्त कुछ ऐसा महसूस होता जैसे वो घटिया से होटल का खाना खा रही हो, जिसके सालन में चटपटे मसालों की भरमार हो, नमक तेज हो और मुंह में जाती एक तीखी करवाहट का एहसास हो, और खारेपन की एक लकीर अलग से मेजे तक खींच गई हो और अंदर ही अंदर आग लगाती चली जा रही हो, और इसे मिटाने के लिए ठंडे पानी की जरूरत हो और मेज पर ठंडे पानी का गिलास भी न हो, बैरे को पुकारने से पहले इस लुकमा हलक में फंस गया हो और आंखों में पानी आ गया। शादीशुदा औरतों से बातचीत करते वक्त बाज़ औक़ात उनकी आंखों में कुछ ऐसी उदासी उमड़ आती जैसे वो पकते हुए खेत का अधपक्का पौधा हो, जिसकी ऊंचाई तो जरूर आसपास के पौधों से बढ़ गई हो और जिसमें बाल भी आ गए हो, मगर बाल में दाने ना पड़े हों, और जिसकी तरोताजगी हर लम्हे कम होती जा रही हो और वो इसी फसल में काट दिया जाने वाला हो। कॉलेज स्टाफ का मर्द चपरासी का होना नागुजीर था, क्योंकि उसे दिन या रात में बहुत से ऐसे काम करने होते जिन्हें कोई औरत अंजाम नहीं दे सकती। इसी वजह से गुज़श्ता 7 बरसों से चपरासी के ओहदे पर कोई ना कोई मर्द ही रहा, हालांकि कोई भी 6 महीने से ज्यादा न टिका। मिस एजाज मलिक ने हर चपरासी को कोई ना कोई वजह बनाकर निकाल दिया, मगर दानो पिछले 2 साल से चपरासी के ओहदे पर बदस्तूर कायम था, और ये दानो की खुशकिस्मती थी कि 20 बार निकालने की धमकी देने के बाद भी मिस एजाज उसे निकाल न सकी थी या निकालना न चाहता। दानो 25 साल का खूबसूरत सेहतमंद नौजवान था, नाक नक्शा तीखा और जिस्म भरा हुआ, पर पता नहीं क्यों वो मिस एजाज के सामने हमेशा ममीने की तरह ममी आने लगता। अनवरा इस पर कई बार झूमी लाई भी थी। कभी कभी तो दानों को मिस एजाज के सामने घिघियाते हुए देख कर अनवरा को दानों से बुरी तरह घिन आने लगती। उधर बहुत दिनों से अनवरा मिस एजाज मलिक पर एक नई सनक सवार देख रही थी। रात हो या दिन, जब देखो इन्हें खटमलों की शिकायत रहती। कुर्सी पर एक लम्हे बैठती नहीं कि उनकी कोहनियों और पहलुओं में खटमलों ने चुटकी भरी। मसहरी पर भी यही होता, और इसके लिए दिन भर में दानों को हजारों गालियों और फिटकारें सुनना पड़ता। दानों और अनवरा सफाई ना करते हों ऐसी बात ना थी। हर हफ्ते कुर्सी और मसहरी को मट्टी के तेल मिले गर्म पानी से अनवरा खुद अपने हाथों से साफ करती, घंटों धूप दिखाती, पर एक बार भी खटमलों के दर्शन न हुए। फिर भी मिस इजाज को काटने के लिए खटमल कहीं ना कहीं से आ ही जाते। अनवरा बहुत परेशान होती, दिन तो किसी न किसी तौर कट ही जाता, पर रात में भी जब यही आफत रहती तो उसे मिस इजाज मलिक पर सख्त तैश आता। अनवरा चाहती कि दानों से उसे लेकर फिर झाला काटी चला जाए, वहां वो फिर से धान और पाट की सुनहरी फसल उगाए और वो खेतों में आजाद चूड़ियों की तरह चहचहाते फिरे, घुटन के इस माहौल से निजात हासिल हो जाए। बस वो हो और दानों, और वो दानों की मजबूत बाहों में सिमट कर सो जाए। दिन चढ़े सो कर उठे और सुनहरे धूप में तालाब में नहाए, खाना पाक करे और दानों का खाना लेकर खेतों की तरफ गाती जाए। अम्मी रूप नगर है राज करैया, रो पैरो जानो जाने ची, हीरा तूरा पार करियो तुम्हारे देश आशी ची। मैं रूपनगर की शहजादी हूँ, रूप का जादू लाई हूँ, घाट 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 का पानी पी कर देश तुम्हारे आयश में। और उसकी सुरीली आवाज डालो खेतों से उछलता उसे करीब, एकदम आ जाए उसे मजबूत बहों में भींच ले और मसरत के झूले में झूलते झूलते खुशी से बेहोश हो जाए। और फिर उसकी आंखें दानों की गोद में खुली, जो अपनी बेकरार फटी फटी आंखों से उसकी हसीन आंखों के खुलने का इंतजार कर रहा हो, और एक लम्हा भरपूर नजरों से दानों की आंख में झांक कर शर्मा कर करवट ले ले, और वहां मिस इजाज ना हो, उनकी धाड़ ना हो, डांट फिटकार ना हो, और दानों को बार बार जी मैडम गलती हुई आंदर आइंदा ना होगी ना कहना पड़े। गुजर फिर गूंजा, अंधवरा चौंक उठी, ढाई बज गए, दानू अभी तक लौट कर नहीं आया। उसने मिस इजाज के कमरे की तरफ देखा, वहां खूब अंधेरा था, उसकी कोठरी की रोशनी भी बंद थी। अनवरा ने चाहा कि उठकर बल्ब जला दे, पर न जाने क्यों हाल स्विच तक ना पहुंच सका, वो खड़ी ना रह सकी, वापस बिस्तर पर गिर गई। उसके दिल की धड़कने बढ़ गई, उसे दानों की फिक्र लग गई, वो अभी तक नहीं आया। फिर उसे सोचा कि आता ही होगा, कहीं किसी काम से रुक गया होगा, मगर वो तो कभी इतनी रात गए तक नहीं रुका करता। वो दानों से एकदम फूट गई, आज जरूर अपने दिल की बात कहेगी, वो दानों के सामने गिड़गिड़ाएगी, उसके पैर पकड़ेगी, तब तक ना छोड़ेगी जब तक उसे लेकर घर चलने का वादा ना कर लेगा। उसकी निगाहों के सामने दिए की मध्यम मध्यम रोशनी से गोल पत्ते की छत का कमरा घूम गया। उस कमरे में वो दानों, छोटा सा कमरा, छोटी सी जन्नत, धीरे धीरे सुनहरी धूप फैल गई, जानवरों के गल्ले की गड्डियां बज उठी और दानों का खाना लेकर खेतों की तरफ चल पड़ी। दानों बंसरी बजा रहा है, वो नाच रही, दानों की बंसरी के नगमों ने उसके पैरों में बिजलियां से भरी, वो बेखुद होकर नाच रही है, बंसरी के नगमों का जादू से नचा रहा है, वो बेखुदी में नाचती रहेगी यहाँ तक कि नाचते नाचते मर जाएगी, बशर्ते कि दानों बंसरी बजाता रहे, एक लम्हे को भी ना रुके, वरना यह रक्स का तिलस्म टूट जाएगा, और अगर ये तिलस्म टूट गया तो जरूर ही मर जाएगी। गुजर फिर गूंजा, तीन बज गए, दारू नहीं आया, लौट तो आना चाहिए था उसे, मगर वो अभी तक नहीं लौटा। अचानक अनवरा को महसूस हुआ जैसे मिस इजाज मलिक के कमरे की मशीनी और कुर्सियों से हजारों खटमल कतार बांध कर उसकी कोठरी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। उसकी कोठरी के बंद किवाड़ों से भी जब गुस्सा आए, उसके बिस्तर पर चढ़ गए हैं और उसके जिस्म के हर हर हिस्से में मुंह गड़ा दिया है और खून चूसने लगे हैं। वो लम्हा ब लम्हा कमजोर से कमजोर तर होती चली जा रही, तभी उसे महसूस हुआ एक मोटा सा खटमल रेंग कर उसके सीने पर चढ़ आया है और वो उसकी खाल को छेद कर अंदर घुस रहा है, वो उसके दिल तक पहुंच गया है और एक नाल से खून पी रहा है, खून पी कर वो फूलते फूलते केकड़ा बन गया है जो अपने पैर सख्ती से उसके दिल में गाड़े हुए और जानो,